इंद्र के ब्रह्म पुत्र के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद में जो जन्मादर्श है उसको यहाँ पर पढ़ लिया है। विभिन्न आचार्यों ने, हजारों आचार्यों ने इसका भाष्य किया, इसकी टीकाएं भी थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी ने संक्षेप में सार्वभौम भट्टाचार्य जी को जो अर्थ इसको बतलाया वही अर्थ धीरे धीरे से सनातन गोस्वामी जी, फिर सनातन गोस्वामी से जीव गोस्वामी और फिर उनसे सुनाकर बस्ती ठाकुर जी और उन्होंने बतलाया बलदेव जी। तो हम लोग पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी का इसका अर्थ, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, फिर जी गोस्वामी का, फिर चैतन्य महाप्रभु जी का इसका संक्षेप में बदलाएंगे जो हमारे संप्रदाय का ही है। बिजली करे जब आज यही पद समाप्त पंखा कल्पतुल तैयार करके फिर उसे सुनता वैसे ही आपने किया। जैसे समुद्र अपना पानी लेखों में संचयित करके फिर उसी से ग्रहण करके अपने सुख और सोने में रत्न ग्रहण करके रत्न या रत्न तक और कुछ नहीं, समुद्र का पानी ही समुद्र में गिर करके और रत्न बना। देश में वो रत्न नहीं, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं रत्नाकर हैं। उन्हीं से ये विचार सुनने गया थी कैसे गया वो बारीकी से जो विषय से वैज्ञानिक है वो समझे, साधारण आदमी नहीं समझे। अंतर ज्ञान रूप से भगवान ईश्वर की यही रुचि है कि अंतर ज्ञान रूप से किसी के हृदय में वो हस्त प्रेरणा कर सकते। कुछ चीजें हैं अपने साधन और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कृपा शिक्षण ऊपर से अवतरित होती है, हम चेष्टा कर सकते हैं किंतु वो भाव आएगा कि नहीं आएगा वो भाव के अधीन है, वो भगवान ही भाव है या राधा जी वो भाव है। तो वो जब कल्पना करके देखेंगे कि हमारे यहाँ पर प्रकाशित रहने का क्षेत्र इसमें हो गया तो भाव में नहीं चलेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कहा कि हमने उनकी नाभि कमल से कमल से हमें पैदा होकर के अनंत काल तक ऊपर नीचे घूम करके इसका आदि खोजने की चेष्टा की किंतु नहीं मानी। इसलिए हम लोगों की चेष्टा का अधिक मूल्य नहीं है। जब भी हम दिन भी अपीचन बन करके अनकंडीशन सरेंडर करके रोए गाय खिजियाए तो वो चीज हमारे अंदर में ब्रह्मा की निराश हो गई, भगवान के शरणागत हो गए तो उन्होंने उनके अंदर में अंतर जाने निश्चित करना। पहले उनको ज्ञान हुआ, तो ज्ञान हुआ भगवान ने देखा जिसको ज्ञान हुआ अनुभूति तो हुई नहीं, तो भगवान ने क्या किया, गृहानगतम कृपाता से लो मैं तुम्हें देता हूँ ये कहता से अपना गांव ज्ञान उनके अंदर में अनुभूति कर दिया। सबसे उनकी यथा अहम यथा विज्ञान मस्तु अनुग्रह हमारे सामने जैसा न अपनी चेष्टा से वो लाख कोटि जन्म भी नहीं। उन्होंने ये भी बतला 50,000 वर्ष तक दिव्य वर्षों से अपने वर्ष से हमारे वर्ष आपके वर्ष से नहीं अपने वर्षों से कठोर आराधना की सभी गोपियों की चरण धूलि नहीं प्राप्त हुई। उनको जगत का सृष्टि इत्यादि करने का ये ज्ञान तो मिल गया किंतु गोपियों की चरण रस प्राप्त करने के अधिकारी नहीं अपने आप होने का, इसलिए ये ज्ञान सहज नहीं। और ऐसे ही हम लोगों को एक दिन में नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो हम ये है नहीं या होगा ही नहीं निराश हो जाने वाला कब है। कभी निराश मत हो इसलिए बतलाया ना उत्साह निश्चय धैर्य सतत कर्म करो, आने से निराश हो जाएगा तो कुछ जो मिलने वाला था वो भी नहीं। कभी निराश मत हो, हमारे समीक्षकों को देखने से ऐसे ही मालूम होता है। इंद्र और विरोचन गए ब्रह्मा जी के पास में, वो खबड़ा करके 25 वर्ष ब्रह्मचर्य करके विरोचन आ गया और मैंने समझ लिया ये मान लिया बस वही सफर ये सरेगी कर बस। और इंद्र विवेचना करके पुनः पुनः उनके पास में गए तो अंत में उन्होंने उनको आत्मज्ञान, वो भी आत्मज्ञान मिला और कुछ अभी परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला और रस विचार उनको नहीं मिला। हम लोग जो चीज चाहते हैं ना हर घुस कर हम लोग कुछ नीचे वाला कुछ भी नहीं चाहें कोई भी होगा हम तो गोपी थे राधा जी की दासी। अरे जो ब्रह्मा को नहीं मिला शंकर को नहीं मिला नारद को नहीं मिला उद्धव नहीं हो सके और वो चुटकी बजाते ही मिल जाएगा ऐसी धारणा मत करो। जब 1,00,000 जन्मों में भी मिले तो समझे बहुत जल्दी तो उसी का मुझे बता रहे कैसे उनको मिला उसी के लिए मार दे। ब्रह्मसूत्र का यह भाष्य ब्रह्मसूत्र गायत्री का भाष्य और गायत्री ओंकार प्रणव का ये विस्तार है। उसमें भूभुआ स्व जो तीनों देवतियां हैं ये संसार है, संसारी का शक्ति जब तक भूभुआ स्व में रहेगी तब तक वो बहुत दूर है, इसलिए इसके ऊपर बुद्धि उठेगी अर्थात अवांग मन स्व गोचर जब हो जाएगा और उसके शरणागत होंगे तो वो भर्ग देवत्व स्वयं तो भगदेव कृष्ण ही है अपनी शक्ति को पहले प्रकाश करेंगे जो सूर्य को भी शक्ति प्रदान करने वाली है तब फिर वो अपनी कृपा करके और तब यहां पर प्रतीक हो तो उसी में जियो जो जिय माने बुद्धि मैं उनका ध्यान करता हूँ किस लिए किस प्रयोजन के लिए हमारे हृदय में जिससे ध्यान करता हूँ उसी को श्रीमद् भागवत के तीसरे श्लोक में बताया, सत्यम परम, मैं जो परम सत्य वस्तु का मैं ध्यान करता हूँ। इसलिए प्रयोजन क्या, वो भी हमारे हृदय में उदित हो, इसलिए उसी के लिए यहाँ पर पहला श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक दे रहे हैं। वेदांत सूत्र ने पूछा अर्थात ब्रह्म विद्या, शंकराचार्य विद्यादि ने बतलाया कि जगत जगत को नश्वर जानने के बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा। हमारे जी गोस्वामी इत्यादि ने कहा कि पूर्व में मानता हूं तो कहो, तब फिर उत्तर में मानता नहीं। जब जगत में कहीं भी सुख शांति न मिले तो परतत्व को जानने के लिए गुरु के पास में प्रश्न करो, तस्मात गुरु प्रपत्ते जिज्ञासु से उत्तम, तो एक उत्तम से को जानने के लिए उत्तम कल्याण हमारा कैसे होगा। जब तक वो वस्तु हमारे हृदय में आविर्भूत नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण, तो उसी को यहाँ पर बतला रहे हैं। व्यास जी कहो या सुखदेव गोस्वामी कहो, व्यास जी वंदना और मंगलाचरण में ही वस्तु का निर्देश, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है श्रीमद् भागवत इसी श्लोक में बदला। कैसे उनको जाना जाएगा इस विषय को भी बदला, और वस्तु है क्या, सब प्रकार से इसको सोच विचार करके तब ये वंदना करें। सत्यम परम भी नहीं कुछ लोग कहते हैं, एक बड़े विद्वान यहाँ से कह रहे हैं सत्यम परम भी में तो पृथ्वी की वंदना यहाँ पर की नहीं गई, तो ये कृष्ण ही श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय है या उनका प्रेम, ये कैसे समझाए। तो हमने जी गोस्वामी का विचार उनको बतलाया, ये सत्यम परम परतत्व जो है वो सत्य स्वरूप है, वो कौन है भागवत में ही बतलाया गया। सतत्य जो नहीं सत्य 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 सप्तम तो ये सत्य किसके लिए कहा गया, जो देवकी के जठर में है, गर्भ में है, गर्भ स्थिति के समय में देवता होता, इसलिए कृष्ण ही वही परम है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम परम परम जन्म इत्यादि ने कहा। जन्मादत्त जगह हम लोग संक्षेप में इसका कुछ अर्थ, पहले हम लोग साधारण रूप में भक्ति विनोद साधु जी की वो क्या है भगवान मरीज की नाला से इसका अर्थ कहेंगे तो समझे, नहीं तो बड़े बड़े विद्वानों ने जीव गोस्वामी और सब लोगों ने लिखा है वो समझ में नहीं है, वो समझ में आना बड़ा कठिन। इसकी कितनी टीकाएं हैं इसका ठीक नहीं, एक सौ आठ टीकाएं तो मिलती हैं और कितने हैं इसकी टीका टिप्पणी भाष्य अनुभाष्य कितना है। समस्त विद्वानों ने अपनी विद्या की सीमा यहीं पर लेकर के क्या, जैसे जन्मादत्त जगह वो ब्रह्मसूत्र का अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा के बाद वाले में जितने बड़े बड़े विद्वान है बस चार सूत्रों पर विशेष टीका, और उसी में समस्त वेदांत सब उसी में लिया, वहीं की विद्या उसी वहीं तक। वैसे ही इस श्लोक में उन लोगों ने बड़े बड़े व्याख्याकारों ने हम उस दिशा में से थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश करें। भक्ति विनोद ठाकुर जी उनकी भगवतार मरु सिंहला में
अपनी जो अवसर का जो मैं कॉल करते हैं
तो ये बतलाते हैं सत्यम परमो सिंह परम माने यहाँ पर परम तत्व वस्तु अद्वय ज्ञान पर तत्व जिसको भागवत ने कहा वही परम सत्य सत्य त्रिकालिक सत्य जी वो परम सत्य मैं उनका ध्यान करता हूं निरस्त कुंकम उसमें कोई वंचना इत्यादि नहीं है माया नहीं है। किस प्रकार से वो तत्व है इस तत्व का को निरूपण करने के लिए एक उनका शुद्ध स्वरूप का वर्णन करते हैं और एक गौण रूप से अन्य और व्यतिरेक दो रूपों से वर्णन करते हैं। पहला जो ये जो उन्होंने कहा सत्यम परम अभी वही यही भगवान का शुद्ध स्वरूप है वो कहते हैं सर्वकाल में सत्य है सर्वकालिक सत्य है सर्वशक्तिमान है रस के समुद्र है वही परम तत्व है समस्त अवतारों के अवतारी उन्हीं को कुछ लोग ब्रह्मा कुछ लोग परमात्मा कोई लोग स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में होता यही परम तत्व ये अपने धाम में नित्य काल अवस्थित रह करके वहीं पर निरस्त हो अर्थात वहां पर माया नाम की कोई चीज नहीं रीते अर्थम जग प्रत्येक न प्रत्येक चार माया किसको कहते हैं जो स्वरूप तत्व से बाहर है स्वरूप तत्व में जिसकी अभिव्यक्ति कुछ नहीं है वो वास्तव में यथार्थ अर्थ अथवा कृष्ण ने अपने समस्त समय अपने धाम में अर्थात गोकुल ब्रज मथुरा और द्वारका सब समय वहीं पर नित्य वहां पर प्रकाशित है वहां पर माया है यही उनका स्वरूप है। और इतर स्वरूप को वर्णन करने के लिए हम लोगों के यहां यह रूप तो प्रकाशित नहीं है तो उस रूप को गौण रूप में प्रकाशित करने के लिए कह रहे हैं जन्मादस्य जगत वही सत्य स्वरूप जो परम सत्य वस्तु है वो जगत में आविर्भूत होकर के अपने अवतार से या कलाओं से या तद्रूप वैभवों से वो इस जगत में प्रकट हो वो सर्वशक्तिमान है अखिल रसामृतसिंधु है वो प्रभु उनकी पराशक्ति एक है वही शक्ति विविध से विविध रूप में सुनी जाती एक ही शक्ति के तीन प्रकार हैं वो है संबित संधिनी सी और तो वही शक्ति तीन रूपों में परिणत होती है परिणत माने क्या
प्रकाश
ब्रह्माधिकारी नहीं है वो अपर अपरिणामी है उनकी शक्ति ही तीन रूपों में परिणत कैसे किस जगत को अपने चित्त स्वरूप से प्रकाश करते हैं और वहां की जितनी भी चीजें हैं वो स्वरूप शक्ति की चित्त वृत्ति से वो प्रकाशित है उसका उसकी एक और शक्ति है जिसको तटस्था कहते हैं जो अणु है चित्त मात्र है अणु उसके द्वारा अनंत जितने जीव हैं सब वो प्रकाशित ये सब तीन में है तीसरी शक्ति है जिसको माया शक्ति कहते हैं। इस शक्ति के द्वारा अनंत कोटि भी ब्रह्मांडों का यह जो बाहरी बाह्य रूप है वो सब उसे प्रकाशित हो जो कुछ हम आंखों से जो नहीं भी देखते अनंत ब्रह्मांड सब है। कहां ब्रह्मांड और क्या है उनकी विभूतियां भगवान हैं हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ब्रह्मांड का उपना कर सकते हैं तो हम लोगों की बता उन शक्तियों से जीव भगवान की तथा शक्ति का ये प्रकाश है या उसी का परिणाम है तो चेतन किंतु भगवान की अघटन घटन पटेसी स्वरूप शक्ति के एक वृत्ति के द्वारा जड़ जगत में प्रवेश करके अपने को जड़ समझ ऐसा नहीं होना चाहिए। जीव चेतन है उसको कभी भी अज्ञान नहीं होना चाहिए। ब्रह्म सब समय की ज्ञान स्वरूप वो ऐसा माया में नहीं फंसेगा किंतु ये छोटा होने के कारण अंश होने के नाते माया के द्वारा उसकी ज्ञान की वृत्ति घट जाती है। इसलिए घटने से वो भगवान को भी भूल जाता है और अपने को भी भूल जाता है और इसको अस्तित्व सदगुणों को ही मैं मानने लगता है। अब ये बतला रहे हैं कि जन्मादस्य अश्च जगतस्य ये जगत की जो सृष्टि स्थिति और प्रलय जिनके द्वारा से हुआ अथवा ये कैसे हुआ अन्य रूप से भगवान की शक्ति तीन रूप में होकर के और अन्य रूप में तीन जगतों को प्रकाश किया यहां तक अन्वय हुआ। अब व्यतिरेक क्या हुआ जीव चिन्मय होने पर भी अपने को भूलकर माया में फंस कर अपने शरीरों को मैं और मेरा समझ करके किसी में लपित और भगवान को पूछे ये व्यतिरेक अन्यायता पक्ष और तरतस्य अर्थे जितने भी उपादान ये जगत के सृष्टि के हैं महत्त्व से लेकर अहंकार बुद्धि मन और उन लोगों से होने वाली इंद्रियां और पंच तत्व और पंच तत्वों के मूल जो रूप हैं उसको क्या कहते हैं
तन्मात्राएं
ये सब रूप रस गंध शब्द स्पर्श और उसके द्वारा ये स्थूल जगत ये सब बीचों में वही अभिज है ब्रह्मा तक भी नहीं प्रकृति भी नहीं है। इसलिए उनको बतलाया अर्थे की अभिज्ञ स्वरा वो स्वयं प्रकाश तत्व उनको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं है। तेरे ब्रह्म विदाज आद कवय आद कवि जो है ब्रह्मा उनके हृदय ने अपने तत्व को प्रकाशित किया किसू जिसमें बड़े बड़े मुंजन से जब सूर्य लोग अर्थात देवता लोग मुक्त सूर्य जिसमें मोहित हो जाते ऐसे वेद का प्रकाश किया सप्त ब्रह्म माने वेद और तेज बार निदान जथा तीनयुग जब तीसर वो अमृता अब जो बतलाया तीन प्रकार की सृष्टि चित्त सर्ग जीव सर्ग और माया ऐसे कहने में समझ में नहीं आया जब भगवान ने कैसे सृष्टि की और सब उदाहरण क्या है इसको समझाने के लिए कहते हैं कि तेजो बाय मृदान जत्र विनिमय अर्थात किस स्वर्ग का अर्थात किस सृष्टि का उदाहरण कथन किस तेज है तेज वो तेज माने अग्नि प्रकाश जैसे हम लोग सब बचपन में स्कूल में पढ़ने जाते तो सड़क पड़ता था तो वो बच्चे हम लोग वो पत्थर लेकर के पत्थर पर जोर से मारते तो उसमें अब की चिंगारियां निकल जाती। अच्छा चिंगारी पहले थी या जब हमने मारा तब भी निकली उसके अंदर में है। ऐसे ही आग है तेज है सर्वत्र किंतु घर्षण से कहीं कहीं पर वो आग फैला जैसे बनों में पेड़ों के संघर्ष से आग पैदा हो जाती है। वो दीप्ति नहीं अब भी उसी में समा जाती है। ये चित्त सर्ग जो है चित्त सृष्टि है साधन के द्वारा कभी कभी झलक में बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि ज्ञानी विज्ञानियों को कभी कभी झलक में जीत पाते सब समय नहीं। नारद जी जैसे व्यक्ति को जो कितनी कठोर साधना है क्षण मात्र के लिए विद्युत की भांति उनके आराध्य देव दर्शन दिए और फिर थोड़ी देर के बाद में अंतर नहीं हो और बोले इस शरीर से उस चीज को तुम दर्शन करने योग्य नहीं हो मैंने छिपा करके दिखला दिया। सदन करते करते जब यह शरीर दूर हो जाएगा मन बुद्धि अहंकार दूर हो जाएगा तब तुम्हारा चित्त सर्ग उसमें से। इसलिए इस जगत में चित्त जगत का भगवान का दर्शन का वृंदावन का ये सब चित्त सर्ग है। ये कभी कभी जगत में सब समय में और बारी जीव सर्ग जो है जीव जो जितने हैं ये कैसे हैं जैसे पानी है। पानी की दो अवस्थाएं यूं तो बहुत सी अवस्थाएं जिसमें दो अवस्था पानी जब तरल होता है पानी जब बर्फ बन जाता है बर्फ होने पर कठोर बन जाता है और पानी रहने में अभी हम लोग कठोर हो गए हैं। जीव भगवान का नित्य दास है ये उसकी तरलता है। इसका शुद्ध स्वरूप है प्रेम से जब तरल हो जाएगा अथवा भगवान का भजन करते करते उसमें भगवान का दर्शन नहीं पा रहा है उस जीवन में जबकि तरल हो जाएगा तब फिर भगवान का। इसलिए अभी ये बद्धावस्था है अभी माया के द्वारा जड़ हो गया जैसे अत्यंत ठंड से हिमालय में पानी जम करके बर्फ हो जाता है बर्फ की चिड़ियां लगी रहती है ऐसे ही हम लोग अभी जमे हुए हैं हमारी बुद्धि जड़ हो गई और जब तरण होगा साधु संतों के सानिध्य में जब तरण हो जाएगा तो तरण होकर के भगवान की सेवा मिल जाएगी। ये उपवास है एक पत्थर और एक ये तीनों जीवों के दो चीजें दिख रहा है और मृदंग मट्टी उदाहरण दिया किसका जब पूर्ण रूप में नहीं है सब आंशिक कुछ पूरा तो आई नहीं सकता कोई उदाहरण। ये मनुष्य बंदर है ये मनुष्य गधा है तो सब पूर्ण रूप में लक्षण नहीं आई उस तरह से सामान्य रूप में आंशिक लक्षण के द्वारा बता रहे हैं। जैसे मिट्टी है कच्ची उसका घड़ा बना लो लोटी बना लो उसी का गणेश भी बना लो उसी का शंकर बना लो उसके तरह तरह की चीजें बना लो प्याला कप खड़िया सब कुछ बना सकते। उसी तरह से अलग अलग चीजें वो मिट्टी ही सब समय है। मान लिया कि मिट्टी को पका दिया अब तो बनेगा नहीं किंतु नहीं कुछ दिनों के बाद में जब पुरानी हो जाएगी वो और अलग अलग कण बिखर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएगी फिर मिट्टी होकर के फिर उसे बन जाएगी मूलता वो मिट्टी है फिर मिट्टी में वो प्रवेश किसी न किसी रूप में कर जाए। उसी प्रकार से ये महत्वत्व और ये सब चीजों का ये विकास ये जड़ विश्व ब्रह्मांड है। इसमें पेड़ है पौधे हैं बीज है और सोना चांदी जितने धातु हैं सब इसी से सुंदर चंपे का पुष्प पेरी चमेली का पुष्प भी इसी से निकलता है और दुर्गंध भरे ये सब चीजें ये शक्ति शक्ति क्या चीज है वही चीजें तो हैं जिसका रचना दुर्गंध होता है बीज भी उसी से और इसी से ही होता है। दूध क्या चीज है घास ही तो है न क्या चीज है, और वो भत्तूरे में जो बीज होता है वो क्या चीज है, मिट्टी का ही रक्त तो है। इसलिए विभिन्न चीजें हैं उसकी उपमा ये मिट्टी दी। कथन के थोड़ा सा विनिमय जत्र त्रिसर्गो अमृता, ये त्रिसर्ग जो जीव सर्ग और अनुचित सर्ग माने जीव सर्ग और ये प्रकृति ये जगत का ये सर्ग, ये कुछ स्थलों में कुछ असत्य होने पर भी अमृता होने पर भी किंतु है सत्य, सत्य है। कैसे, जब मनुष्य सत्य है तो उसकी छाया जो है वो झूठी होगी, वो भी तो सत्य ही है। इसलिए ये जगत व्यापार जो है ये भी मिथ्या नहीं है, ये भी सत्य है, किंतु वो जैसे सत्य इस सृष्टि का है ऐसा जीव भी नहीं है और ये भी जीव भी कुछ कुछ आंशिक रूप में, किंतु ये कुछ अंशों में ये सत्य है किंतु नश्वर और परिणाम। तो जिसके कारण से ये सब सारी सत्ताएं सत्य जैसे दिखती है, किसे वो ब्रह्मायण प्रिन्नति प्रिन्नति वो स्वयं ब्रह्म है, नित्य नवीन रूप से वो बढ़ता है और दूसरों को भी वर्धित करता है और सब जगह में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट है, जगत के बाहर भी और भीतर। यदि हम लोगों में भगवान की सत्ता नहीं होती तो हमारे जीव की और ये शरीर की सत्ता होती, यदि उनकी शक्ति नहीं हो तो तीस सर्ग भी नहीं होता। जड़ सर्ग की तो बात भी क्या है, जो कुछ है यदि भगवान की सत्ता उसमें है तो वो ठीक है, और नहीं तो जिन चीजों में भगवान की सत्ता नहीं है जैसे खुष्प आकाश पुष्प, इसमें भगवान की कोई सत्ता है इसलिए वैसा नहीं। इसी तरह से जो चीजें नहीं है उसमें भगवान की सत्ता नहीं है इसलिए नहीं, और जहां जहां पर भगवान की सत्ता थोड़ी भी रहे तो वो वस्तु बन जाए, तो वहां पर त्रिसर्गो अमृता, ये त्रिसर्ग जो है ये अमृता, अमृता माने नवमृता निर्मृता, कहीं कहीं पर वो असत्य जैसे दिखते हैं किंतु है नहीं, तीनों ही तीनों को बतलाया। क्यों, जिनके कारण जिनके तटस्थ लक्षण के कारण ऐसा होता है वही अपने धाम में वे न अपने शक्तियों से परिवेक्षित शक्तियों से युक्त वो अपने धाम में, धाम माने अपने तेज में अपने स्थान में, धाम माने
आश्रय
गोकुल मथुरा वृंदावन द्वारका इत्यादि नित्य वहां पर, और भी उनके जो धाम है बैकुंठ इत्यादि में वो धाम में वो नित्य परिपूर्ण रूप में है, सदा निरस्त पूर्वकम माया का जहां पर कोई भी व्यापार नहीं है, निरस्त पूर्वकम सत्यम परम वो परम तत्व है उनका मैं ध्यान करता हूं। इसलिए ध्यान करता हूं जैसे ब्रह्मा ने ध्यान किया तो अंत में उनके हृदय में सबको प्रकाशित कर दिया, उसी प्रकार से हमारे हृदय में इस सत्व को हमारे हृदय में। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं साधारण रूप में, ये वक्त ये साधारण रूप में समझो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं पहले तो पहला अर्थ तो इसी रूप में, वो तीन प्रकार के अर्थ किए, एक अर्थ किया साधारण जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया, ये तो पहला अर्थ उन्हीं लोगों के आधार पर उन्होंने किया। दूसरा अर्थ उन्होंने किया केवल कृष्ण पर, तीसरा अर्थ किया राधा और कृष्ण पर, और चौथा अर्थ किया भक्ति पर, प्रेमा भक्ति के ऊपर,
आदर
और भक्ति के ऊपर, भक्ति आदर इत्यादि।